ओम शांति। बाबा के इस अव्यक्ति मास में आप सभी विशेष तपस्या के अनुभव के लिए आए हैं।
In this Avyakt month, you are all here specially to experience that Avyakt stage.
और बहुत सुंदर टॉपिक आप सबने चुनी है, बाप समान बनना है।
Very beautiful topic you have chosen, to become equal to the father.
हम सबके दो पिता, एक लौकिक पिता तो अलग है, लेकिन एक अलौकिक पिता और एक परम पिता।
We all have two fathers. One is our alaukik father and the other is the supreme father.
हमको किसके समान बनना है?
Whom should we become equal to?
जब बाप समान कहते हैं तो कौन सा बाप है जिसके समान बनना है? अलौकिक।
When we say becoming equal to the father, to which father should we become equal to?
और पारलौकिक के समान नहीं बनना है।
Should we be becoming to alaukik father or to paralaukik, to the supreme father?
Both na? Shiv Baba kehte hain, bacche tum mujhe ashariri banne mein, nirakari banne mein follow karo.
Shiv Baba says, children, you follow me in becoming incorporeal, in becoming bodiless.
और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में फॉलो करो।
एंड ब्रह्मा बाबा सेज, चिल्ड्रन यू फॉलो मी इन बिकमिंग अव्यक्त एंजल।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में थे, साकार से फिर अव्यक्त बने और अव्यक्त के बाद फिर निराकारी वतन में जाएंगे।
सो इवन ब्रह्मा बाबा वॉज कॉर्पोरियल जस्ट लाइक अस एंड देन ही बिकेम सटल एंड देन सो वी हैव टू फॉलो हिम इन बिकमिंग लाइक दैट।
तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जो फरिश्ता बन गया?
So what did Brahma Baba do that he became an angel?
ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आप सबने सुनी है।
So all of you have heard the life story of Brahma Baba?
कौन कौन जानते हैं?
How many of you heard his life story?
पढ़ी है ना?
Have you studied?
बहुत अच्छा है।
Very good.
ब्रह्मा बाबा को जिस दिन निश्चय हुआ कि शिव बाबा इसमें आ गए हैं, उस दिन से अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दिया।
So the day Brahma Baba came to know that incorporeal father has entered him, then he has completely surrendered himself.
शिव बाबा के समान बनने के पुरुषार्थ में वो लग गए।
He then completely got immersed in becoming equal to Shiv Baba.
और समान बन करके दोनों कंबाइंड हो गए।
So he made that effort, he became equal and combined with Baba.
कभी बाबा को दादा से, दादा को बाबा से अलग कर सकते हैं?
So can you ever separate Baba from Dada and Dada from Baba?
कर सकते हैं।
Can you?
हम तब बहुत प्यार से कहते हैं बाप दादा।
We say with a lot of love, बाप दादा।
शिव बाबा हमारा आत्मा का पिता है और ब्रह्मा बाबा दादा इसलिए है, बड़ा भाई है।
शिव बाबा इज द फादर ऑफ द सोल्स एंड देन ब्रह्मा बाबा इज दादा, ही इज लाइक आवर बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर।
और जब बाप ब्रह्मा बनता है तो शिव बाबा दादा बन जाता है, ग्रेट ग्रैंड फादर बन जाता है।
सो व्हेन ब्रह्मा बाबा बिकम्स दादा देन शिव बाबा बिकम्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
तो हम सब डबल मात पिता की पालना में पल रहे हैं।
सो वी आर ऑल बीइंग सस्टेन्ड बाय डबल मदर एंड फादर।
आज बाबा ने कहा कि आप बच्चों को डबल इंजन मिली है।
सो टुडे आल्सो बाबा मेंशन्ड इन द मुरली दैट वी ऑल वी गॉट डबल इंजन।
डबल इंजन है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा।
सो इट्स द डबल इंजन ऑफ शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा।
पावरफुल इंजन है।
पावरफुल इंजन इट्स ए।
चढ़ाई ऊंची है ना, बहुत ऊंची मंजिल के हम सब राही हैं।
सो इट्स ए हाईएस्ट डेस्टिनेशन एंड द वे इज स्टीप एंड वी आर ऑल ऑन द जर्नी, वी आर द ट्रैवलर्स टुवर्ड्स दैट हायर डेस्टिनेशन।
कहाँ पहुंचना है हम सबको?
वेयर डू वी हैव टू रीच?
कौन सी मंजिल है?
व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन?
परम धाम, अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है।
इज द डेस्टिनेशन ऑफ बिकमिंग कंप्लीट।
आत्मा जिस स्वरूप में परम धाम से इस सृष्टि पर आई, अभी वापस जाने के समय वैसा ही बन के जाना है।
सो द फॉर्म इन विच द सोल केम फ्रॉम द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड टू दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड, इन द सेम फॉर्म वी हैव टू गो बैक।
अब उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, जो बाबा के समान बन गया, हम सबको भी उनको फॉलो करना है।
सो वॉट एफर्ट डिड ब्रह्मा बाबा मेक एंड वॉट डिड ही डू टू बिकेम दैट कम्प्लीट फॉर्म, सो वी हैव टू ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ।
कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको कोई नया रास्ता नहीं लेना है, जो कदम मैंने रखे हैं पीछे पीछे कदम पर कदम रख के आ जाओ।
सो मेनी टाइम्स बाबा सेज यू डोंट हैव टू टेक एनी न्यू पाथ, व्हाटएवर पाथ आई फॉलोड यू जस्ट नीड टू पुट स्टेप बाय स्टेप, फॉलो द पाथ स्टेप बाय स्टेप।
तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी सारी कारोबार संभाली, अकेले बाबा थे, इतने बच्चे, इतनी जवाबदारियां, इतना विरोध, बहुत कुछ सामना करना पड़ा।
सो इन दोज डेज ऑफ ब्रह्मा बाबा ही हैड सच ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैड टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन, सो ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम।
अभी तो इतने बच्चे हो गए हैं बाबा के यज्ञ को संभालने वाले, और उस समय तो एक बाबा अकेला था।
सो इन दोज डेज लीडर्स इट वॉज जस्ट ब्रह्मा बाबा हु हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन। Nowadays, the number of children, the number of people who are taking care of the responsibility, but in those days, it was just one Baba.
और बाबा के साथ बहनें अधिक थी, इसलिए बाबा को बड़ी गलत नजर से लोग देखते थे।
And in those days, along with Baba, there were many sisters, and so even people outside, they would have false drishti towards Brahma Baba because there were many sisters around him.
क्योंकि सोचते थे कि श्री कृष्ण के लिए कहते हैं 16,108 रानियां भारत के अंदर, तो ये ब्रह्मा बाबा भी शायद ऐसी रानियां बना रहा अपनी।
सो इन द पाथ ऑफ डिवोशन दे टॉक अबाउट श्री कृष्णा दैट ही हैड 16,108 वाइफ्स। इफ यू हर्ड अबाउट दिस सो दे वुड से दैट इवन ब्रह्मा बाबा इज लाइक दैट because there are a number of sisters around, they would say that they would defame him in that way.
क्योंकि उस समय अखबारों में निकल गया था कि दादा को अभी तक 400 मिली हैं, अभी 16,000 चाहिए।
So it came in the newspaper that now Dada Lekhraj, Brahma Baba had 400 wives at the moment, and then he needs 16,000 wives more. So that came in the newspaper.
तो कितनी बड़ी ग्लानी थी, और उसके बीच में बाबा को अचल अडोल एक रस रहना, आज एक के ऊपर कोई कलंक लगा दे कितना उसको डिस्टरबेंस हो जाएगी।
सो देयर वाज अ ह्यूज डिफेमेशन ओवर ब्रह्मा बाबा, सो टू मेंटेन दैट स्टेज ऑफ बीइंग अनशेकेबल इमूवेबल टू बी लॉस्ट इन वन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफेमेशन ही हैड।
इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी कभी मुरली में एक शब्द कहते हैं कि रास्ते चलते मैं फंस गया, वाट वेंदे वामन पाथो, मैं ब्राह्मण रास्ते चलते फंस गया।
सो दैट्स व्हाई इन मुरलीस इफ यू हैव हर्ड ब्रह्मा बाबा वुड से व्हाइल वॉकिंग अलोंग आई गॉट स्टक, सो इट्स ए सेइंग, इट्स अ प्रोवोक काइंड ऑफ थिंग इन हिंदी, ए ब्राह्मण इज वॉकिंग एंड देन ही गॉट स्टक।
क्योंकि कहां इतना नामाचार, ब्रह्मा बाबा का लौकिक में बहुत महिमा थी, बहुत अच्छे आदर्श व्यक्तित्व थे।
सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेज दैट ब्रह्मा बाबा हैड दादा इन द फॉर्म ऑफ दादा लेखराज दैट ही वाज एन आइडल ह्यूमन बीइंग।
लेकिन जब शिव बाबा उनमें प्रवेश हो गए तो बाबा को बहुत गालियां खानी पड़ी।
बट देन आफ्टर शिव बाबा एंटर्ड द बॉडी ऑफ ब्रह्मा बाबा ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफेमेशन।
लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दी।
But in spite of all that insults, he never let his stage fluctuate.
और बाबा के ऊपर ऐसे बहुत कलंक लगते थे, तो जो लौकिक बाबा के बच्चे थे, दादी निर्मल शांता वहाँ कलकत्ता में रहती थी, तो बाबा के प्रति जब कोई ऐसे अखबारों में उल्टा सीधा लिखता था तो कहती थी, बाबा मेरे बाप के ऊपर ऐसे करते, मैं इनके ऊपर केस कर दूँ।
So Nirmal Shanta Dadi, she is the daughter of Brahma Baba. When she would see that there is all these different types of defamations and insults being put on Brahma Baba, she would say, I would file a case against them.
Baba kata nahi bachchi, ye sab nirdos hai, inka dos nahi, inko pata hi nahi hai, ye kaun keh raha hai, kaun kiski raniya hai sab.
Brahma Baba would say no. When Nirmal Shanta Dadi said, I will file a case, he said, no, they are all my children. They are not at fault.
अभी जानते नहीं है, जब जान जाएंगे तो अभी गाली देते हैं, फिर फूल चढ़ाएंगे.
At the moment they don't know who it is, but then when they know, they will start giving you flowers.
तो उस समय तो बहुत गालियां ब्रह्मा बाबा ने खाई.
So Baba had to face a lot of defamation.
लेकिन अभी देखो ब्रह्मा बाबा की हर जगह पर कितनी मान्यता है, हर घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो है. उस समय तो ब्रह्मा बाबा को लोग पसंद नहीं करते थे.
So now if you see today, each of us have a lot of respect for Brahma Baba. We have his photo in every home today. But in those days, Brahma Baba faced that defamation.
So Brahma Baba ne kya aisa pursarth kiya jo itni jaldi karmatit ban gaye?
So what effort did Brahma Baba do that he became karmatit?
Ek bahut gehra pursarth Sakar Baba ki murliyon mein aata hai.
A deep effort that Baba talks it in Sakar Murli.
Baba kai baar Murli mein kehte hain, bachche, apne ko atma nischay karke mujhe yaad karo.
So Baba says in the Murli, children, have faith that I am a soul and then remember me.
Aur Baba ne iske liye bahut mehnat ki, bahut pursarth kiya.
And Baba made a lot of effort for this.
Kyunki ye deh bhan, jis deh mein atma reh rahi hai, वो इतना प्रबल है जो बार बार कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं.
बिकॉज दिस बॉडी कॉन्शियसनेस इज सो स्ट्रांग दैट इट ब्रिंग्स द फाइव सेंसेस इनटू इट्स अट्रैक्शन वेरी सून.
कभी आंखें धोखा देती, कभी कान धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी हाथ, कोई न कोई कर्म इंद्रिय के अधीन हो जाती आत्मा.
So the soul comes under the influence of the sense organs, sometimes under the influence of the eyes, sometimes the influence of the ears, sometimes for the mouth, sometimes under the influence of the hands. So all these different sense organs influence the soul.
Baba ne ye bahut gehra pursat kiya ki main atma hu, ye atma hai, ye atma hai.
So Brahma Baba made a deep effort that I am a soul, they are a soul, he is a soul, she is a soul.
जब शुरू शुरू में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने यही पाठ पक्का किया और सबको यही पक्का कराया.
सो व्हेन शिव बाबा एंटर्ड द बॉडी ऑफ ब्रह्मा बाबा, सो दैट्स व्हाट दे मेड दिस लेसन वेरी फर्म दैट आई एम ए सोल.
बाबा की युगल का नाम था जसोदा, बाबा की बच्ची का नाम था निर्मल शांता, बच्चे का नाम था नारायण. ये जो मूल बच्चे, तीन बच्चियां थी, दो बच्चे थे, तो बाबा हर एक का नाम लिखते थे, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मल शांता दादी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, पक्का किया एकदम.
सो ब्रह्मा बाबा हैड थ्री डॉटर्स एंड टू सन्स एंड हिज वाइफ वाज जसोदा, हिज डॉटर वाज निर्मल शांता दादी एंड हिज सन वाज नारायण दादा. सो ब्रह्मा बाबा वुड राइट फॉर ईच ऑफ देम. जसोदा इज अ सोल, निर्मल शांता इज अ सोल, नारायण इज अ सोल. So that's how he would practice.
और इस प्रैक्टिस से बाबा की जो दृष्टि थी एकदम ऐसे हो गई कि सब आत्माएं हैं, कोई संबंध दैहिक नहीं है.
So with this practice, with this deep practice, whomever he would see as a soul, no relation with the body.
भगवान ने गीता में एक महावाक्य कहे हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो.
So God has said in the Gita scripture that forget all the bodily religions and just remember me alone.
और ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, न देह को देखा, न संबंधों को देखा, और एकदम वही धुन लग गई कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है.
So ब्रह्मा बाबा made this deep effort. Neither this body is mine, nor the body relations are mine. I don't have any connection with this body and bodily world. My connection is just with one father, one Baba.
और सभी संबंधों से बाबा ने बहुत प्यार किया शिव बाबा को.
So Brahma Baba would love Shiv Baba in all relationships.
कभी कहता है मैं बाबा का मुरबी बच्चा हूँ, मैं अकेला शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाकी ये तो सब शिव बाबा के पोतरे हैं।
So sometimes he would say that I am the most beloved child of the Baba. I am the only most beloved child of Shiv Baba, and the rest are all the grandchildren.
कभी कहता है मैं उसकी वन्नी हूँ, उनकी वाइफ हूँ, वही एक मेरा साजन है।
Sometimes he says I am his wife and he is my beloved.
बाबा ने शिव बाबा के साथ सब संबंध जोड़े, बच्चा भी बनाया, बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया, सतगुरु भी बनाया, और सब संबंध बना के अपने सब लौकिक संबंधों से बुद्धि को तोड़ लिया।
So Brahma Baba would hold all relationships with Baba as a wife, as a child, as a beloved. So he had all relationships with Baba. By holding all those relationships with Baba, he was able to connect just with him.
कोई ने भी बाबा को इस रूप में नहीं देखा, ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है। लौकिक में जितने संबंध थे, कोई उस नजर से बाबा को देख नहीं पाता था।
So whoever it might be in the laukic world as the bodily being relationships, whether it was a father, whether it was a child, no one would have that sense of feeling that in that laukic way, in that laukic relationship, because of him having all the relationships with Baba.
ब्रह्मा बाबा सबकी नजरों में बाबा ही हो गए। कोई भी ये नहीं कह सकता था ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, ये मेरा कुछ भी, कोई संबंध दूसरा नहीं रहा। इतनी प्रैक्टिस की निराकारी स्थिति की, आत्मा समझने की, जो देह भी भूल गई, संबंध भी भूल गए, खुद को भी और दूसरों को भी।
So Baba made this deep effort of seeing the self as a soul and practicing that incorporeal stage in such a way that himself as well as his relationship, everyone forgot that they had that bodily relation. Even Brahma Baba didn't have that feeling that their laukic relations, nor the laukic relations had the feeling of that with Brahma Baba because of his practice of being a soul and the incorporeal stage.
और बाबा कितने नशे से कहते बच्चे उसको कितनी जगह चाहिए, यहाँ पर आके बैठ जाता मेरे बाजू में।
And Baba would say, with a lot of intoxication, I don't need a lot of space. I just need a little space that I just come and sit here.
वो मेरा गुरु है, मैं उसका शिष्य हूँ, मैं बाजू में बैठ जाता हूँ।
He is my guru and I am his disciple and I just come and sit next to him.
वो आप बच्चों को पढ़ाता है, मेरे कान सबसे नजदीक है, मैं पहले पढ़ता हूँ, मैं पहला नंबर स्टूडेंट।
He would have the intoxication that I am the first one to study from him because I just sit next to him.
फॉलो करना पड़ेगा, ये इसी में फॉलो करना है।
No, we have to follow in all these things.
ऐसे बाबा ने प्रैक्टिस की। स्नान करने बाबा जाते थे तो यही संकल्प करते थे कि शिव बाबा के इस रथ को मैं लुटी चढ़ा रहा हूँ।
So even when he was taking a shower, he would say, okay, this is the chariot of Baba that's being showered.
शिव बाबा इसमें बैठा है, मैं इसके ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, तो जैसे शिव बाबा के ऊपर पानी की लोटी चढ़ा रहा हूँ।
It's like Shiva Baba is sitting here in the chariot and I am pouring water on Baba, no? So it's being washed, it's being showered.
फिर कहता था बच्चे उसके सिवाय तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, अब मैं साजन के साथ खा रहा हूँ, मैं सजनी हूँ, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुमसे ही बात करूं, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं।
So even while eating, I am eating with the beloved, you know? So having that feeling that I have to eat with you, I have to sit with you, I have to sleep with you. So in this way, he used to have that conversation with Baba.
एक दिन बाबा भोजन कर रहे थे, कोई बच्चा आया, कुछ बातें सुनाने लगा, तो बाबा का ध्यान गया, क्या सुनाता है? फिर कहता है, तूने मुझे साजन से दूर कर दिया।
So someone came to Baba and they were eating something and then they were talking different things. Then Brahma would say, "You made me separate from my beloved."
क्योंकि मैं तो उसके सिवाय खाता नहीं हूँ, उसके साथ ही खाता हूँ।
Because I don't eat without him, I only eat with him.
तो बाबा के साथ खाया, बाबा के साथ खेला, बाबा के साथ पढ़ाई किया, इतना कंबाइंड होकर के रहा जो देह भूल गई।
So Brahma Baba would practice like he is eating with Baba, he is playing with Baba, he is sleeping with Baba, he is doing everything with Baba. So he forgot this consciousness of the body.
लेकिन फिर भी लास्ट मुरली जब चलाई 18 जनवरी को, कहता है बच्चे ये देहभान को भूलना बहुत मेहनत का काम है, इसको छोड़ना बहुत मेहनत है।
So even in the last Murli, on 18th of Jan, Baba would say, you know, to forget this consciousness of the body, it's a big thing, it's not that easy.
लेकिन बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके आत्मा अपनी उस संपूर्ण स्टेज को पा गई है.
बट बाय मेकिंग वेरी डीप एफर्ट ही वॉज एबल टू अटेन दैट स्टेज ऑफ परफेक्शन.
तो पहला और लास्ट एक ही पुरुषार्थ है, हम सबको उसमें फॉलो करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये देह अलग है, मैं अलग हूँ.
So the first and last effort that Brahma Baba made and each one of us have to make is I am a soul, I am separate from this body. We are not same, the soul is separate from this body, different.
करते हो रोज अभ्यास सभी?
Do you practice this every day?
करते हो?
Do you practice?
जब सवेरे सवेरे बिस्तर पर होते हैं ना तो ऐसे अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ.
So when I wake up early in the morning, I have to practice that I, the soul, am being coming from the incorporeal world and entering this body.
मैं उस परमधाम घर से अवतरित हुई आत्मा.
So I am the incarnation, incarnated soul. I'm coming from the incorporeal world into this corporeal world, entering this body.
मैं श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए इन कर्म इंद्रियों का आधार ले रही हूँ.
I am making use of the sense organs to play an elevated part.
सारे दिन का कार्य पूरा हुआ, शाम के समय बाबा को अपना समाचार दिया और बाबा से बोला, बाबा अभी मैं आपके घर में आता हूँ, आपके पास गुड नाइट.
सो होल डे यू परफॉर्म एक्शंस एंड द एंड ऑफ द डे यू से बाबा नाउ आई कम बैक टू होम टू द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड.
तो ब्रह्मा बाबा को इस बात में अगर हम फॉलो करेंगे ना तो उनके समान बन जाएंगे.
सो इफ यू फॉलो ब्रह्मा बाबा इन ऑल ऑफ दिस वी बिकम इक्वल टू हिम.
ये निराकारी स्टेज का जितना पुरुषार्थ करेंगे ना कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी.
सो एज मच एज वी प्रैक्टिस द इनकॉर्पोरियल स्टेज आवर सेंसेस बिकम कूल.
उत्तेजनाएं, आवेश, आवेग, जितना भी विकारी संकल्प विकल्प है सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे.
ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ विशियस थॉट्स नो वी कम अंडर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, एवरीथिंग कम्स डाउन विद दिस प्रैक्टिस.
और ब्रह्मा बाबा ने तो केवल लास्ट में नहीं, शुरू से ही जब शिव बाबा प्रवेश हुए हैं उसके पहले 1932 में बाबा ने अपनी डायरी बनाई और ये अभ्यास किया कि मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ और ये मन मेरा वजीर है, ये कर्म इंद्रियां मेरे अधीन है, कर्मचारी हैं. ऐसे बाबा बात करते थे इनसे.
So even before Shiva Baba entered the body of Brahma Baba in the year 1932, it is shared in the story that Baba would write in his diary that I am the master. I am the master over the senses. I am his soul. So this is how he would write in his diary.
तो निराकारी स्टेज का अभ्यास करते करते वो आत्मा निर्विकारी बन गई क्योंकि विकारों को जीतने में बहुत मेहनत है.
So by practicing the incorporeal stage, we become free from vices. So it's not that easy to become viceless. We need to practice that incorporeal stage.
और निर्विकारी स्टेज में पांचों विकार हैं, एक नहीं है, और उसके साथ बहुत सारी बहुत बड़ी सेना है विकारों की.
So in this viceless stage, there are number of vices. You know, it's like an army of vices that we have to conquer to become viceless.
पांच तो मूल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. उसके बाल बच्चे कितने हैं? ढेर सारे हैं.
फाइव आर द मेन वाइसेस, एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस वाइसेस.
परसों बाबा कह रहे थे ना मुरली में, अभ्यक्त बाबा कह रहे थे देखो ईर्ष्या है, घृणा है, क्रिटिसाइज है, कितने सारी बातें आपस में संगठन में बहुत नुकसान कर रही है.
सो इन द रिसेंट मुरली ऑल्सो बाबा वॉज टॉकिंग अबाउट जेलसी, hatredness and criticism among the children that's causing loss to one another.
In sab vikaron par jeet ho jaye tab kahenge nirvikari.
So when we become conqueror of all these vices, then we are said to be viceless.
Sirf kaam vikar ko hum nahi jeet rahe hain, kaam to mahashatru hai hi.
So lust is the greatest enemy, but it's not just lust that we are conquering.
Lekin koi bhi vikar mujhe na sataye, कोई भी परेशान न करे, कितना आत्मा को पावन बनाना होगा.
सो नो वाइस शुड इरिटेट मी. वी हैव टू बिकम सच प्योर सोल दैट नो वाइस कैन इरिटेट अस.
जैसे आज बाबा कह रहे थे ना, जब संस्कारों का संस्कार कर दिया, अगर वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता, फिर से सामने आता तो भूत है, भूत को देख करके डर लगता है.
So today Baba was talking about how we have to demolish all the old sanskars. But if we don't do that, then the ghost will come.
और सब देह अभिमान के ही संस्कार, इतने जन्म हम इस साथ रहे इसके साथ, एक जन्म नहीं रहे, कितने गंदे काम किए, विकारों के अधीन होकर के, बुराइयों के अधीन होकर के, संस्कार बन गए अंदर अंदर.
So from many many births, these संस्कार्स have been created, become well to come under the influence of this body consciousness and other wrong things that we have been doing for past many births.
इसके लिए हम सबको कुछ तपस्या करनी पड़ेगी.
So for this definitely we have to do some tapasya.
बिना योग की अग्नि के संस्कार चेंज नहीं होते हैं.
Without the fire of yoga, the संस्कार्स don't change.
अब ब्रह्मा बाबा ने कैसी तपस्या की होगी?
So how did Brahma Baba do tapasya?
तपस्या का आधार था त्याग.
The basis of tapasya is renunciation.
और त्याग में भी सबसे बड़ा त्याग देह अभिमान का. मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं पद वाला, पोजीशन वाला, बहुत सारा जो मैं है उसका त्याग किया.
So the biggest renunciation is the renunciation of this body. I am this. This is my position. I have these. These are my belongings. So the renunciation of all these bodily related things.
ब्रह्मा बाबा ने कभी अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की.
Brahma Baba, even he never accepted his own praise.
अगर कोई बाबा को कहता था, बाबा आज आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, तो बाबा क्या कहते थे? बच्चे मैंने नहीं सुनाई, शिव बाबा ने सुनाई.
When children would say, Brahma Baba, you today it was a very good murli that you shared, then Brahma Baba would say, no, it's not me, it was Shiv Baba who shared the murli.
कोई भी कार्य के लिए बाबा को कोई महिमा करे, कोई बताए, बाबा ये बहुत अच्छा हो रहा, बहुत आप अच्छा कर रहे, बाबा नहीं, बच्चे भूल गए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, वो करता है.
Even when Brahma Baba does some good actions, when children would praise, then Baba would say, no, it's not me who did that, it was Baba who made me do that.
दो बातें बाबा ने पक्की की, कोई ने कोई बात प्रशंसा की, महिमा की, कुछ भी किया, बच्चे एक शिव बाबा करता है, दूसरा ये मेरे बच्चे करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मुझे याद नहीं करो.
So whenever Brahma Baba would receive such praise and appreciation for what he does, he would always say, it is Baba who did it, or he would say, it is children who did it. He never would take that praise for himself.
आज हम कुछ थोड़ा भी करते हैं तो सोचते हैं मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे पहचाने, मुझे कोई कहे कि आपने बड़ा अच्छा किया, खुशी होती है उसमें, और ब्रह्मा बाबा ने उसका त्याग कर दिया.
Today if you see, if we do some good thing, then we look for praise that someone would appreciate, but then Brahma Baba never saw for it, he never looked for that.
आप सोच सकते हो कैसा त्याग होगा बाबा का.
So you can think of his renunciation.
स्थूल चीजों का त्याग तो बाबा ने ऐसे कर दिया जैसे कुछ हमारा है ही नहीं.
These corporeal things Baba just renunciated in a way that nothing belongs to him. Very easily he renunciated everything.
आप तो भी सब बाबा कहता बने बनाए पर बच्चे पहुँचे हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई यज्ञ की तो पता है बाबा का जो कमरा है बहुत छोटा कमरा था, और ये जो बाबा की झोपड़ी है वो उसकी थी बांस की, पत्तों की.
So now we all got everything ready made, like everything is ready when we come here, but in those days even Brahma Baba, he would live in a very small room. Baba's hut, Baba's room was made with leaves.
मैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद 71 में आया मधुबन.
So I came to Madhuban in 1971 after Baba became avyakt.
तो बाबा की जो लेटरिन बाथरूम थी ना, वो एक टाट का ऐसे लगा करके, और उसी में बाबा स्नान करने जाता था. बाबा के पास कोई लेटरिन बाथरूम नहीं थी कमरे में.
So when I came in 1971, I saw that the latrin and bathroom, the toilet that Baba would use, it was nothing built, anything like that. It was just a small little thing that Baba would use it as a bathroom.
और बाबा के पास गाय थी, गाय का गोबर होता था, बैल थे, तो बाबा उस गोबर से और कोयले को उठा करके ऐसे गोला बनाता था, खुद बनवाता था बैठ करके.
So there was a cow and a buffalo, so the cow dung, Even Baba would make a ball out of that cow dung with his hand.
Baba ko bahut nasha tha ki bacche dekho ye bhi kaam itna chota hai, sadharan kaam hai. Lekin ye karte hue main vishw ka malik banne wala, mere haath mein vishw ka gola aane wala hai.
So the ball of that cow dung, Baba would say, with that such intoxication, even while doing such an ordinary thing, he says, while making this this circle of cow dung, I would become the master of the globe. So he would see it as that I am becoming the master of the globe.
Aur Baba kabhi aise kisi ko drishti de deta tha to usko Shri Krishna ka sakshatkar hota tha.
So whomever Brahma Baba would give drishti, they would have the vision of Shri Krishna.
और बाबा ने जब मकान बनाना शुरू किया, सबसे पहले वो हवाई महल बनाया बाजू में, जो ऊपर है मेडिटेशन हॉल के साथ, वो बिल्डिंग बनी, नई बिल्डिंग बनी. तो बच्चों ने कहा, बाबा अभी ये टीन टपकती है, पानी गिरता है, आप यहाँ रहो.
So in those days there were not much buildings at that time. So next to the meditation hall there is a Hawaii building. So there used to be, like in his room, Brahmava's room, the water would be coming, the drops of water would be coming, the rain would be falling, and so children would say, Baba, you come and live in this building.
Baba ne kaha, bacche dekho, Shiv Baba jo hai na, wo is purane tan mein aata hai, ye purane ghar mein hi Baba rahega, naye ghar bachchon ke liye.
So Baba would say, Brahma would say, children, this is an old body and Baba comes in this old body. So I also live in this old room, old building. These new buildings that are being built, these are for you children.
Baba ne itna tyag, na koi sthul sadhan swikar kiye, na mahima swikar ki, koi phool le aata tha, bacche ye phool kisko de, to ye tan patit hai, ye phool to devtaon par chadhte hain, is par nahi, isko nahi chahiye.
Brahma Baba would have a lot of renunciation, that even if someone gives some praise or brings some flowers for him, he would never accept that.
तो ब्रह्मा बाबा ने इस सब बातों का त्याग करके तपस्या की.
So renunciation of all these things, he did a lot of tapasya.
और उस तपस्या के बल से उनकी जो कर्म इंद्रियां थी बहुत शीतल, शांत, पवित्र, स्वच्छ हो गई.
So with that power of tapasya, his sense organs became cool, they became pure.
तो हम सबको भी फॉलो करना है ना.
So we all have to follow him, no?
उनके जैसा निर्विकारी बनना है.
That we have to become viceless like him.
Ang ang sital sugandhit ho jaye.
Each and every organ should become cool.
Koi maan de, koi apman kare, koi mahima kare, kuch nahi chahiye.
Someone gives us praise, someone gives us defamation, whatever we get, we have to remain the same.
Tab atma pavan banegi, bahut pavitra nirmal ban jayegi.
Only then the soul becomes pure.
हम सबको ऐसा पुरुषार्थ करना है.
So we all have to make such effort.
लेकिन इसके लिए तपस्या कैसी की होगी बाबा की, थोड़ा सा सोचना, विचार करना.
So think about it, how would Baba made that effort?
ऐसा सहज नहीं है इन विकारों को जीत लेना. कहीं ना कहीं स्वप्न में, संकल्पों में, पास्ट की बातें, संस्कार बने हुए पिछले जन्मों के, बार बार इमर्ज हो जाते हैं.
So it's not that easy to renunciate the vices. Sometimes it may come through our dreams, there are these old sanskars, you know, these keep emerging, these vices keep emerging in different ways.
इसलिए कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं, आत्मा बिल्कुल स्वच्छ पावन बन जाए, उसके लिए बहुत अच्छी मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए.
So the senses have to become cool, you know. So for that we have to make effort to make our mind and intellect pure.
बाबा ने इतनी गहरी तपस्या की. बाबा के कमरे में जब हाल है हिस्ट्री हाल, वहाँ एक घड़ी थी, उसमें एक चिड़िया थी. वो चिड़िया आती थी चूं 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 घंटी बजाने के लिए, बाहर निकलती थी जब घंटा पूरा होता था ना, एक घंटा. तो बाबा कहता था, बच्ची आवाज करती है, इसको चुप कर दो, शांत कर दो.
So even in those days in the history hall there was a clock, and in that clock it would make some noise, and there is one bird that would come and that would move the clock, you know, here and there. So there is some sound that comes from the clock. Then Brahma would say, remove that clock from there.
Bahut silence, gehri silence ke andar chale jate the, deep silence.
So because he needed that silence, he would go into that deep silence. Even the sound of the clock was disturbing, that's why. So he went into that deep silence.
Last dinon mein baba se koi good morning bhi karta tha, bacche good morning awaaz mein aake kyon karte ho silence?
Even in the morning children would come and say good morning, baba would say why do you come into sound? No, so he appreciated that silence.
Itni gehri silence ka ekagrata ka abhyas kiya atma ko pavan banane ke liye.
So he went into that deep experience of silence in order to make the soul pure.
दादी प्रकाश मणि को किसने देखा है? कौन कौन है जिन्होंने देखा?
How many of you saw दादी प्रकाश मणि?
दादी प्रकाश मणि का अनुभव सुनाता हूँ मैं. बहुत नजदीक था दादी के.
Let me share with you the experiences with दादी प्रकाश मणि because I was very close with her.
दादी ने 2004 से 7 तक 3 साल का बहुत गहरा अलग से पुरुषार्थ किया.
So from the year 2004, Dadi made a very different and special effort.
तो एक दिन दादी ऐसे आंख बंद करके बैठी थी ऐसे. मैं बाजू में गया, बैठ गया, हाथ हिलाया, पकड़ा. मैंने कहा दादी, बोलती नहीं थी इतना, ऐसे देखा, बोलो. कहा दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो?
So once it happened that Dadi was closed her eyes and she was just sitting like this. And then Raju Bhai went to her and he took her hand in his hand and shook her hand and then asked Dadi what happened.
To Dadi ne kaha batao main purushart kya karti hu.
Then Dadi said okay let me tell you what effort I make.
Dadi ne aise haath kiya aise. Wo kehti hai ye jo atma heera hai na heere ko main yahan rakhti hu aur main isko charon taraf se dekhti hu isme koi daag to nahi hai.
So then Dadi said, she put her hand in this way and she said, this is the diamond here. So I put the diamond here and then I see how much the diamond is shining and is there any flaws, any spots on the diamond. So she was checking that. That's the effort.
जब मैं बहुत देर तक उसको देखती रहती हूँ तो बाबा सामने आता है, बच्ची इस डायमंड में कोई दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग हीरा है.
So she keeps looking at that diamond in her palm. That there is no flaws in it, then Baba would come and say, "Child, it is a flawless diamond."
जब flawless बन गई, तब वो कर्मातीत बन गई, शरीर छोड़ा.
So as she became that flawless diamond, she became karmatit. She left her body.
तो ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना है. मेहनत तो नहीं है, लेकिन करना है, टेंशन रखना है.
So we all have to make that effort. We have to keep attention. We have to move towards that stage.
कुछ समय एकांत में चले जाओ, अपने आप को देखो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन से संस्कार हैं जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, संपूर्ण बनने नहीं देते.
So we have to go into that silence and see, look at our own self. You know, what defects do I have? What weaknesses do I have? So when I'm in that solitude, then I will be able to see what is there in me that I have to remove.
ऐसी तपस्या को ही वास्तव में कहते हैं ज्वालामुखी याद, जिसमें ज्वाला जैसे चल रही अंदर से, लगन की आग प्रज्वलित है.
So such remembrance we should have, it should be like a volcanic stage of yoga. No, only there has to be that flame of yoga.
उसमें संस्कार, पुराने विकारी संस्कार खत्म हो जाते हैं.
In that flame of yoga, in that volcanic stage of yoga, all my vicious संस्कार्स विल गेट यू नो बर्न्ड इन दैट योगा, इन दैट फायर.
तो ब्रह्मा बाबा ने सब पुरुषार्थ करके अपने आप को संपूर्ण पावन निर्विकारी बनाया.
सो मेकिंग दैट एफर्ट ब्रह्मा बाबा मेड हिमसेल्फ वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल.
लास्ट दिनों में जो बाबा से मिलते थे, मेरे लौकिक वाले भी हर बार आते थे, पिताजी आते थे, माताजी आती थी. मैं तो बचपन में था, स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, मैं नहीं आया. लेकिन वो आते थे, कहते थे बाबा के हाथ में हड्डियां नहीं है, एकदम मुलायम, ऐसे लगता है जैसे फरिश्ता है, शरीर दिखाई नहीं देता बाबा का.
सो इन दोस लास्ट डेज ऑफ ब्रह्मा बाबा आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज गोइंग टू द स्कूल. आई डिडंट कम टू सी बाबा, बट माय हिज पेरेंट्स, हिज मदर एंड फादर, दे वुड कम टू मधुबन एंड दे वुड से दैट ब्रह्मा बाबा, इट सीम्स लाइक देर आर नो बोन्स, इट्स जस्ट वेरी सॉफ्ट स्किन लाइक एन एंजल. ब्रह्मा बाबा वाज जस्ट लाइक एन एंजल.
और वैसे भी बाबा ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, जो कोई को भी दृष्टि देते थे तो बाबा का शरीर गुम हो जाता था, दिखाई नहीं देता, फरिश्ता दिखाई देता था.
So Brahma made such effort that whomever he gives dristi, they would just see Brahmavava as an angel. No, they would not see his body, just an angel.
तो निराकारी और निर्विकारी ये दो स्थितियां इतनी अच्छी बन गई बाबा के जो कर्मातीत बना गई.
So these two stages, one is that of being incorporeal and second that of being viceless. So with these two he became karmatit.
लेकिन निर्विकारी बनने के बाद फिर निरहंकारी क्यों कहा है? क्योंकि निर्विकारी में तो अहंकार भी आता है.
So after he became viceless, we also talk about egolessness. So ego is also a vice. So why do we talk about egolessness after vice, becoming viceless?
क्योंकि कई बार वाइसलेस बनने का, पवित्र बनने का भी अहंकार आ जाता है. मैं पवित्र बन गया, मैं योगी बन गया, उसका भी नशा उल्टा हो जाता है.
Sometimes we have a false intoxication that I became pure, you know, I became a yogi, I became viceless. So that ego comes in.
कई है ना जिनको ऐसा रहता है कि मेरे जैसा योगी कोई नहीं है, मेरे जैसा समझदार पवित्र कोई नहीं है, मेरे कोई संकल्प विकल्प नहीं आते. ये भी तो अहंकार है ना.
Sometimes people have this false ego that okay, I don't have any type of vice in me, I don't have any type of defect in me, so that is also a type of ego.
तो बाबा ने उस त्याग का भी त्याग कर दिया. इतना निरहंकारी बन गया, बच्चे ये तो पुरुषार्थी है, ये तो पतितन है, इसको क्यों याद करते हो, इसको क्यों देखते हो, अपनी कोई भी चीज स्वीकार नहीं की. इतना निरहंकारी बन गया.
So Baba became such egoless that even this body, he would say, this is just an effort maker, I am also making effort, this is an old one. So in that way he would not have any type of ego about himself.
लास्ट तक भी बाबा के महावाक्य रहे, बच्चे ये तो पुरुषार्थी आत्मा है, इन विकारों को जीतना इतना सहज नहीं है, कर्म भोग बहुत कड़ा है, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, बच्चे मेरे से भी आगे हैं.
इवन टिल द लास्ट डेट बाबा वुड से यू नो इवन दिस बॉडी इज एफर्ट मेकर, दिस वाज इन वाइसेस एंड वी आर ऑल मेकिंग एफर्ट, इवन चिल्ड्रन आर मेकिंग मोर बेटर एफर्ट देन मी, दैट्स व्हाट ही वुड से.
मेरे ऊपर तो इतनी जवाबदारियां हैं, इतने बच्चों का बंधन है, इतना सब करना है, तो मैं कैसे योग करूंगा, बच्चे मेरे से अच्छे योगी.
He would say, I have a lot of responsibility, I have a lot of children, I have a lot of things to do, so children make even good effort than me, that's how he would say.
लेकिन अंदर अंदर गुप्त पुरुषार्थ करके दिखाया नहीं किसी को, बिल्कुल न्यारा हो गया, उपराम हो गया, साक्षी हो गया.
But internally he made such deep effort that he became a detached observer, that he became very detached from everything.
कोई भी सेवा छोड़ी नहीं, लास्ट दिन भी सब पत्रों का उत्तर दिया अपने हाथ से.
He didn't leave any type of service till the end. Even on the last day he answered the letters.
खुद अपने हाथों से पत्र लिखा.
He would write letters with his own hand.
और फिर दादी जी को, दादी प्रकाशमणि जी को पूरे घर का चक्कर लगवाया अपने हाथ पकड़ के, बच्चे यहाँ ये बनेगा, ये ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाना है, ये मिस्त्री हैं, ये काम करना है, यहाँ ट्रेनिंग, बहुत सारी प्लानिंग बाबा के अंदर जो थी सब दादी को ट्रांसफर कर रहा था.
सो इन दोज लास्ट डेज ही वुड होल्ड दादी प्रकाशमणि'स हैंड, ही वुड टेक हर अराउंड एंड शो हर एवरीथिंग, दिस इज ट्रेनिंग सेक्शन, दिस इज इंद्रप्रस्थ, दिस आर द पीपल हु आर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन, सो ही वुड शेयर एवरीथिंग टू दादी.
और बाबा इतना भी भविष्यवाणी जैसे बोलता, बच्चे बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बनाने होंगे, बहुत प्रबंध करना होगा, आबू रोड तक क्यू लगेगी. माना दादी को कुछ पता नहीं था, बाबा ये सब सुना रहा था दादी को.
सो इवन इन दोज डेज इटसेल्फ ही वुड शेयर एवरीथिंग विद दादी, यू नो द फ्यूचर फोरकास्ट, लाइक मेनी चिल्ड्रन विल बी कमिंग हियर, देयर विल बी ह्यूज क्राउड हियर एंड देयर विल बी ए क्यू टिल आबू रोड फ्रॉम हियर. सो Brahmavava would share all these things in those days to Dadi Prakashmani.
तो बाबा के पास इतनी सब प्लानिंग भी थी, इतनी सब जवाबदारियां भी थी, इतने बच्चे थे, इतनी सारी बातें, लेकिन सबसे न्यारा प्यारा उपराम हो गया.
So he had all the planning, he had lot of responsibility, but at the same time he became detached from everything. He became loving and detached.
Last मुरली जो चलाई शाम को, जल्दी बच्चों को बुलाया 8 बजे और मुरली चलाई आधा पौना घंटा, और लास्ट में गेट पर आके बोलता, अच्छा बच्चे नम्र चेत, निर्माण चेत, निरहंकारी बन के रहना, विदाई, छुट्टी।
So on the last day, in the night at 8 o'clock, he called the children early, and then the murli was done in like 45 minutes to an hour, and then before going, he stood at the door in a very humble way, like we all have to be humble. तीन बातें कौन सी बताई?
निर्माण चेत, निरहंकारी, निर्विकारी बनके रहना। Okay.
Become viceless, incorporeal, and egoless.
वही महावाक्य उच्चारण करके कमरे में गया और हाथ में हाथ दादी को शक्ति दिया और उड़ के चला गया।
So while giving this message, he went to his room, and in the room he had his hand in the hand of Dadi Prakashmani. He handed over everything and then he flew away.
तो बाबा जैसा बनना है ना?
So we have to become like Baba.
कितने भी कार्य हों, कितनी भी जवाबदारियां हों, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से वृत्ति उपराम। विस्तार में अभी जाने का समय नहीं है।
So no matter we have so many things to do, we might have lot of responsibilities, we have lot of things to do, but still from internally inside we need to be detached.
जितना हम उपराम, न्यारा, साक्षी रहेंगे, उतना हम बाबा के समान बन सकेंगे।
So as much as we stay in that form of being a detached observer, so as much as we stay detached with everything, then we are able to become equal to Baba.
तो यहाँ बाबा के घर में आए हो, ब्रह्मा बाबा समान बनने का लक्ष्य है, तो यही तीन बातों का गहरा पुरुषार्थ है, और ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, यही पुरुषार्थ करके उनके समान बन सकते हैं।
So we are all now here in Baba's home, sitting here. So we are all making effort. We all want to become equal to Baba. So for that, we just need to make effort in these three things.
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी.
Being incorporeal, viceless, and egoless.
सारे पुरुषार्थ का सार यही है.
It is the essence of all the effort.
ठीक है. Okay. अभी आप कुछ पूछेंगे? प्रश्न है?
Does anyone have any questions?
भाई.
Yes, brother. Can you please?
माइक पर।
ओम शांति भाई, आई वुड लाइक जस्ट इफ यू कैन डिस्टिंग्विश बॉडीलेस एंड इनकॉर्पोरियल,
शरीरी और निर्विकारी स्थिति में फर्क।
शरीरी स्थिति तो आत्मा की स्थिति, निराकारी। जब निराकारी स्थिति अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो निराकारी स्टेज योग अभ्यास है, और जो निर्विकारी स्टेज है प्योरिटी है, पवित्रता है, हर अंग शीतल हो जाए, कोई विकार उत्पन्न न हो। तो शरीरी स्टेज पुरुषार्थ है, लेकिन उसकी रिजल्ट है निर्विकारी स्टेज।
सो बॉडीलेस स्टेज इज द एफर्ट दैट वी आर मेकिंग इन दिस बॉडी, एंड incorporeal stage is the result of that effort.
Om Shanti. What is written here is Bap Saman, the journey and the destination. So Bap Saman can be a goal, can be the end stage that we all aspire to, but is it practical for any soul, including Brahma Baba, to become Bap Saman? Dusra, the supreme soul is supreme soul, individual souls are individual souls. Can we ever aspire to be equal to Baba? Thank you.
Baba jaisa ban sakte
hain. Aisa hai ki Baba jaisa banna mana unki visheshtaon mein saman banna. Bhagwan nahi ban jayenge hum, lekin unki jo visheshtaen hain, unki jo qualities hain, usko to hum follow karke usme saman ban sakte hain na. हम भगवान नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम उनकी क्वालिटीज को धारण करके उनके समान बनते हैं।
सो इट्स नॉट दैट बिकमिंग इक्वल टू द फादर मीन्स वी आर बिकमिंग गॉड, यू नो, सो वी आर नॉट बिकमिंग गॉड, बट वी आर बिकमिंग इक्वल टू हिम इन हिज क्वालिटीज। वी आर अडॉप्टिंग हिज क्वालिटीज, वी आर अडॉप्टिंग द स्पेशलिटीज दैट ही हैज, वी फॉलो हिम एंड वी बिकम इक्वल टू हिम इन दोज क्वालिटीज एंड स्पेशलिटीज। दैट इज बिकमिंग इक्वल टू फादर, नॉट बिकमिंग गॉड।
कोई बच्चा बाप समान बनना चाहे तो किसमें बनेगा? उसके बिजनेस में बनाएगा, उसके जो गुण हैं, उनकी जो विशेषता, उसमें समान कहेंगे तो अपने बाप जैसा है, जैसा बाप करता है ऐसा ये करता है, तो जो वो कर रहा है ऐसा हम करें, माना उसके समान बन गए। ऐसे बाप तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन उसके समान तो बन सकते हैं। समान बनना अलग चीज है, वही बन जाना वो अलग चीज है। वो हो गया समा जाना, वो है समान बन जाना।
Just like a businessman, he does the business and his son also does the business. So when they become, when he also does business like the father, they say that he is like the father. So it doesn't mean that he is becoming that father. It doesn't, in the same way here also, it's not that we are becoming, we ourselves are becoming that supreme father. No, we are becoming equal to him in all his qualities and specialities and virtues.
कुछ कोई बहने पूछो, सिस्टर्स,
कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द सीड स्टेज इन विच यू कैन बर्न योर सिंस?
बीज,
जैसे बीज में सब कुछ समाया होता है, कोई बीज जड़ नहीं है, वो जड़ बीज में भी पूरे वृक्ष का एसेंस समाया होता है, और जब बीज को बो देते हैं, मिट्टी का साथ मिलता है, तो वो वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही जो आत्मिक स्टेज है उसमें सब गुण, सब शक्तियां समाई हुई हैं, उसका विस्तार नहीं है, लेकिन जैसे आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, उस स्वरूप की अनुभूति है, वो इसेंस उसके अंदर है।
जस्ट लाइक इन द फिजिकल सीड, एवरीथिंग इज मर्ज्ड इन द सीड, लाइक द एसेंस ऑफ द होल ट्री इज मर्ज्ड इन द सीड। So in the same way, in the soul also, there are number of different qualities. So all these qualities also are merged in that soul conscious stage.
So जब वो qualities अंदर merge हैं, जब इस शरीर में वो आती है, मिट्टी का साथ मिलता है, तो उसके चेहरे से, उसके बोल से, उसके कर्म से वो गुण दिखाई देने लगे। अगर बीज रूप स्टेज हमारी है, बनती है, उस स्टेज में हम रहते हैं, शांति के प्रकंपन, प्यार के प्रकंपन, गहरे एकदम लगन के मगन होकर के ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसे वो क्वालिटीज बीज की शरीर के द्वारा प्रकट होगी।
सो एज वी द सोल एंटर दिस बॉडी, सो द सीड ऑफ द सोल, इट स्टार्ट्स शोइंग इट्स क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग दैट वेव्स ऑफ लव, दैट वेव्स ऑफ पीस, दैट वे ऑफ staying loving and detached, you know. So these qualities of the soul are being exhibited through this body when we are in that seed stage.
जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित हैं, तो वो सब समाये हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है।
So in the soul consciousness stage, it's that the qualities are inside me, but they don't exhibit outside. But in the seed stage, these qualities are being exhibited outside.
सीड स्टेज के अंदर हम बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणों को, उन शक्तियों को जैसे अपने में भर रहे हैं, और वो जब भर लेते हैं और जब प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, तो वो दिखाई देने लगते हैं।
सो व्हेन वी आर इन दैट सीड स्टेज, वी आर एबल टू फिल आवरसेल्फ्स फ्रॉम दैट सन ऑफ नॉलेज, ऑल हिज क्वालिटीज एंड वर्चुज, एंड व्हेन वी कम इनटू एक्शंस, दोज क्वालिटीज आर सीन।
ओके, सब बीज बन गए।
So all of you have now become the seeds. Any more questions?
Yes, sister. Oh, I'm sorry, brother. Can you tell us what does volcanic yoga mean? I mean, yeah, maybe you can describe some feelings when it comes. Volcanic yoga.
Jwala Rupi Yoga ke baare mein bataiye, kaise karna hai, kya hai?
वास्तव में ये कोई स्थूल आग नहीं है। ज्वाला माना कोई अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, लेकिन ज्वाला माना लगन, लगन की अग्नि कहा जाता है। बहुत जिसकी लगन होती कहते हैं इसको तो प्यार की आग लग गई है। तो बाबा के प्यार में समा जाना, खो जाना, सब बातें भूल जाएं।
So when we talk about volcanic yoga, it doesn't mean any corporeal fire, you know, that we can see. It's not that fire, but it is the fire of love. It's my intention that I go deeper into that fire of yoga, that I'm immersed in that yoga, in that deep my love with Baba.
इसको अग्नि इसलिए कहा है, जैसे कोई चीज आग में डाल दी जाती है तो उसका रूप रंग बदल जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा के प्यार में खो जाते हैं, समा जाते हैं, तो हमारे संस्कार, हमारी अवगुण सब समाप्त हो जाते हैं, रूप बदल जाता है।
Just like we put anything in the fire, it changes its form and shape. In the same way, when we are merged in that fire of love of Baba, all our old sanskars, they are transformed.
इसलिए कोई भी देहधारी की, कोई भी व्यक्ति वस्तु की याद न आए, एक बाबा की प्यार में, उसकी लगन में हम मगन रहें, वही वास्तव में ज्वाला रूप योग है।
So for us to not get stuck in any love of bodily relations of or anything of this old world, but we are totally immersed in that love of Baba, then we are said to be having that volcanic yoga.
अगर आत्मा प्योर बन रही है, शुद्ध बनती जा रही है, संस्कार चेंज हो रहे हैं, माना आपका योग ज्वाला रूप है, ज्वालामुखी है।
As much as the soul is becoming clean, as much as the soul is becoming pure, which means that your sanskars are being transformed, that means we have that volcanic stage.
और वास्तव में जब हम संगठित होकर के कोई एक विचारधारा वाले बैठते हैं, 10 लोग, 15 लोग, और एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो याद की अग्नि है, वो वायुमंडल को, प्रकृति को, व्यक्तियों को चेंज करती है, परिवर्तन करती है, उसकी सकास, उसका वाइब्रेशन फैलता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग ज्वाला बनता है और उस ज्वाला में सृष्टि का परिवर्तन होता है।
So even us in a gathering, if we 10 of us or so, we sit in the gathering and we hold one pure thought, and by holding that one pure thought, there is that vibration that comes, there is that atmosphere that is created, and in that deep fire of remembrance, in that by holding that pure thought, our sanskars are transformed, and with our transformation, even the matter is transformed.
चलो 5 मिनट के लिए सब अशरीरी बन के बैठ जाओ। ब्रकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार की तरह चमक रहा हूँ और बाबा की बहुत पावरफुल किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं।
So let's now practice this. Let's stay seated in that bodiless stage that I, the soul, am seated here as a star shining, sparkling, and Baba's rays are passing through me.